अं नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मोक्षं करोति वाचालं पङ्गुलं गहति गिरिं यत्कृपा तं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। श्रीमद्भागवतम् स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक नंबर 22 शीर्षक राजा पुरंजन के गुण का वर्णन। सुनासां सुदर्तिं बालां सुकपूर्णं वराननां समाविनस्तकर्णाभं विव्रतिं कुण्डलश्रियां। सुना अत्यंत सुंदर नाक सुदतिं अत्यंत सुंदर दांत बालाम तरुणी सकोपलाम सुंदर मस्तक बर अनानाम सुंदर मुख साम समान रूप से विनस्त व्यवस्थित कन्याभाम दोनों कान विभ्रतिम चमचमाती हुई कुंडल श्रियम सुंदर कुंडलों बालों को बाले। अनुवाद। उस स्त्री के नाक दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते हुए कुंडल से सुशोभित थे। कृपया दोहराई। उस स्त्री के नाक दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडल से सुशोभित थे। तात्पर्य। बुद्धि का शरीर इंद्र तृप्ति के वस्तुओं का भोगता है जो उसे ऊपर से ढंकी है। जथा गंध दृष्टि तथा ध्वनि सुनासम सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा कान प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय को सूचित करता है। उसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि उसी वस्तु को चबाकर तथा जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जानना चाहता है। सुकोपणम अथवा सुंदर मस्तक उसे विमल नमस्तिक मन का सूचक है जो वस्तुओं को उसी रूप से जाने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारे वस्तु व्यवस्थित किए जा सकती हैं। दोनों कान में पहने हो गए कुंडल बुद्धि को ही करामत है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ का वर्णन अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पश्चात देश तारिणे वंशा कल्प तरु वत्स कृपा सिंधु वैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेव नमो नमः नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नम पंचतत्माधकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यम जगन्नाथाय ते नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राव्यम जगन्नाथाय ते नमो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सदितौ गौड़दय पुष्पवंतौ चित्र संदतमनुदौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सत वृंदावन धाय परमानंद वर्धन कालिंदी जल कलोल संग मारुत सेवितम प्रातकालीन भगवत कक्ष में आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी वृंदन से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वंदन एवं नमन करता हूँ। ये जो शीर्षक आप पुरंजन का गुण का वर्णन है तो आप सुन चुके हैं कि राजा प्राचीन परिषद ने एक कर्मकांडी यज्ञ में लिप्त हुआ था तो दैववशत नारद मुनि का नज़र में आए तो उन्होंने राजा प्राचीन परिषद को ऐसे मना नहीं किया कि आप यज्ञ मत कीजिए क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड एक कोश का से भरा हो चुका था क्योंकि उन्होंने इतना गहराई से यज्ञ में मन दिए थे कि इसको साधारण बात से वो समझने वाला नहीं थे, बस साधारण बात से भी बस में आने वाला नहीं थे। इसीलिए ये बद्ध जीव को कैसे ये बहिर्मुख से कृष्ण का उन्मुख किया जाए ये गुरु का काम होता है। अब नारद मुनि का बहुत सारे शिष्य देखिए, ऐसे कि मृगारी जैसे ये पाप कर्म में निवृत्त हुए थे लेकिन उनको भी उन्होंने शुद्ध भक्त से परिणत कर दिया। लेकिन ये प्राचीन वैश्य एक राजा भी है और कर्मकांड से उन्होंने अभी लिप्त हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपना दैवी शक्ति से जिनको बॉडी दे चुका था उनको भी उन्होंने दर्शन कराया, तब उन्होंने थोड़ा और आध्यात्म की तरफ झुके। क्योंकि महाजन का कहना है कर्मकांड ज्ञानकांड सकली विश्र भांड अमृत बलिया जेबा खाए नाना जुनी सदा फेरे कदर्ज भक्षण करे तार जी जन्म अधपते जाए। एक कर्म कांड और ज्ञान कांड उपासना कांड ये वेद में वर्णित है, तीन कांड है, तीन पद्धति है। जब कर्म कांड का जो विधि विधान से कोई ही लिप्त होता है, जब सकाम कर्म में जब लिप्त होता है तो स्वर्ग सुख मिलता है। कर्म कांड ज्ञान कांड में जो लिप्त हो जाता है, भगवान का बारे में उनको ज्ञान होता है, जैसे भगवत गीता में बतला जाता है कि चतुर्विदा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन अर्थ अर्थाति ज्ञानी च परतर सब। ये चार प्रकार का भक्त मेरा शरण में आते हैं। अर्थ जो विपद में पड़े हुए हैं, अर्थ अर्थाति जैसे ध्रुव महाराज का छोटा से आकांक्षा लिए के लिए उन्होंने आए, अर्थ अर्थाति ज्ञानी चतुर कुमार ने आए थे, ज्ञानी बन के तरह और जो भगवान का पाद पद्म में प्रणाम किए, ये तुलसी मिश्रित जो सुगंध को उन्होंने आग्रहण किए तो शुद्ध भक्त में परिणत हो गए। अर्थ होता है ज्ञानी च भरतर सब, और ये ज्ञानी को ही ज्ञानी च और उनको ही श्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो ज्ञान कांड और कर्म कांड और उपासना कांड है, ये सब क्या है ना, ये विष का भांड, मतलब एक बर्तन में बा मिट्टी का पात्र में आप विष जैसे रख देते हैं तो ऐसे विष जैसे भरा हुआ है। क्यों ना, उसमें ऐसे वर्णन है कि ए कर्म करने से, ए जाग करने से आप इसी लोक को प्राप्त होगा। खास करके सूत्रामणि यज्ञ जैसे भगवान कृष्ण का समय में, यहाँ से थोड़ा दूर में जो भातरुल है वहाँ पर ये ब्राह्मण लोग अपना यज्ञ में लिप्त थे, क्योंकि सूत्रामणि नामक यज्ञ क्या करते थे, उसका फलस्वरूप क्या, स्वर्ग प्राप्त करना था, ये कर्मकांड का है। लेकिन भगवान उनको कृपा करने के लिए ग्वाल बालक रूप में तो लीला कर रहे थे, वो गौरव चराते वहाँ पहुँचे और भोग का बहाना करके, जो कि आत्मराम आप्त काम है, उनको कोई भूख प्यास नहीं लगता है, लेकिन आज एक कर्म कांड से उनको भक्ति पथ में लगाने के लिए अपना सखाओं व मित्रों को प्रेरित किया। अरे सखाओं व मित्रों, हमको बहुत भोग लग रहा है, आप जाइए ब्राह्मण लोग आ रहा जग में लिप्त है, जग कर्म में, आप उन लोग से कुछ खाद्य पदार्थ लेके आइए। तो ग्वाल बालक भगवान का निर्देश अनुसार वहां पर पहुंचे और जाचना किए, पूरा बायोडाटा बता दिए किसी भगवान का, लेकिन उन्होंने इतना कर्मकांड में व्यस्त थे स्वर्ग सुख भोगने के लिए, क्योंकि कर्मकांड का विधान ऐसे है, थोड़ा भी यदि त्रुटि हो जाए तो वो आर जो हम अभीष्ट सिद्धि के लिए जो कामना करके हम यज्ञ करते हैं उसका प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति जीवन में कभी अवमान ना हो जाए, बस त्रुटि भी हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता प्रणाम प्रमाण क्या करते हैं ना, स्वल्पमवश्य धर्मस्य त्रायते महत्वाय, ये भक्ति जीवन और कर्मकांड में है। लेकिन उन्होंने ये ग्वाला बालक का अनुरोध को कोई भूखे भी नहीं किए, सुने नहीं, एक कर्मकांड का पद्धति देखिए कैसे, तो आपस चले आए और भगवान को सारा संदेश बता दिए। बोले कि रहते वो तो हूँ कि चूं कुछ भी बोले नहीं, अरे बैठ जाओ क्या कुछ थोड़ा देर हो जाए। तो भगवान जान लिए कि इन लोग का आर हमारे पते अवज्ञा है, उन लोग बहरे कैसे ये भक्ति पथ में कैसे उनको उद्धार किया जाए। तो दोबारा भगवान बहर अपना मित्र को भेज दिए, कहाँ पर अपना जो गुबा ब्राह्मण के जब पत्नी लोग जहाँ पर थे वहाँ पर, क्योंकि माताओं का हृदय जो हो कोमल होता है, जो कि भक्ति मत है भक्ति पथ में है। नहीं तो पुरूरवा प्रसंग में आप सुने हैं कि उर्वशी बताते हैं हमारे जो मन है वा स्त्री का जो मन है, तरसकस का अंदर जो तलवार जैसे वा म्यान का अंदर जैसे भरा रहता तलवार ऐसे ही है, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए अपना परिवार को भी हम अनन्वा सर्वनाश कर सकते हैं। लेकिन आज वो ब्राह्मण पत्नी है, बहुत सरल हृदय भक्तिमती थे, और वो ये सूत्रामणि यज्ञ के लिए बहुत सारे नैवेद्य ठीक किए थे। तब तो जो ग्वाल बालक आए और देखते उन्होंने फिर पूछने लगे, आप कहाँ से आए हो, किसके लिए? तो उन्होंने भगवान का ये व्यस्तता उन्होंने बता दी कि कृष्ण बलराम को भूख लग रहा है। इतना सुनते ही, कृष्ण बलराम का नाम सुनते ही उनका व्यग्र इतना बढ़ गया कि अभी क्या करेंगे, कब जाएंगे, इसी चक्कर में। और ब्राह्मण लोग को भी पूछे नहीं, सारे के सारे भोग लेके वहां पहुंचे, क्योंकि सभी एक कर्म का भोग व फल का भोग भोगता तो भगवान है। इसमें एक बात बतला है, क्योंकि उस स्त्री की नाक दांत तथा मस्तक सभी अतिव सुंदर है, उसके कान भी समान रूप से सुंदर है, चमचावते कुंडल से सुशोभित था। ये ब्राह्मण का जो पत्नी लोग का भी सुंदरता ऐसे ही था। इसमें एक प्रश्न उठता है, इतना महान प्रसंग है, इसमें आरंभ भागवत में कई बार इस स्त्री रूप का वर्णन किया जाता है, जहां पर कि 18,000 श्लोक में श्रीमती राधारणी एवं लक्ष्मी देवी का भी वर्णन नहीं आता, और गोपियां का भी वर्णन नहीं आता। ये बहुत बड़ा आश्चर्यचकित बात है, बार बार ये स्त्री का नाक और कान, उनका स्तन का बारे में क्यों वर्णन आता है? तो ये सुंदरता एक ब्रज का जो ब्राह्मण लोग का पास भी था, उन्होंने भगवान को खाद्य सामग्री अर्पण किए और वहाँ से उन्हें लौट के जाना नहीं चाहते थे, और गए भी नहीं। भगवान से बोले, हम जाएंगे तो उन्होंने हमको अस्वीकार कर देंगे, हमको ग्रहण नहीं करेंगे। तो भगवान बतलाए, कोई चिंता की बात नहीं है, आप जब जाओगे ना उसका मन भी बदल जाएगा, क्योंकि वो कर्मकांड में बहुत प्रसिद्ध थे, और ये जो ब्राह्मण थे वो सादे सीधे और सरल हृदय वाले, सरल दिल वाले थे, और भगवान को भोजन करने का बाद अपना अभिष्ट सीधे हो गया, और उनका माध्यम से अभी उनका पति लोग का भी भलाई हो गया, क्योंकि उन्होंने जब वापस आए पति लोग अपना को अधिकार देते थे, हमारे ये शास्त्र, हमारे जो पंडित, हमारे जो यज्ञ, ये धीक है, हमारे जीवन ही धीक है, क्योंकि भगवान को हम पहुंचा नहीं पाए। अस्वस्थ में ये ब्राह्मणी ने कोई तपस्या, अध्ययन, कोई यज्ञ, कुछ भी नहीं किए थे, और भगवान अपना हाथ से न ग्रहण कर लिए। इसीलिए हमको ये जो पुरंजन उपाख्यान व पुरंजन का जो गुण वर्णन में, ये जो स्त्री का रूप का जब वर्णन है, उसका भर्तृहरि ने अपना और भर्तृहरि शतक में वर्णन किया कि जब माताएं रूप जौवन में अपना शरीर को सजा देते हैं, तो अब क्या होता है, ये मनुष्य मात्र ही नहीं, ये साधु मात्र ही नहीं, उसमें भर्तृहरि ने बताते हैं कि ये प्रकृति भी आकृष्ट हो जाता है। आप सुने, जो कि अपना तपस्या से, अपना आध्यात्मिक बल से महान ऋषि वो ब्रह्मर्षि को प्राप्त किए, जो कि विश्वामित्र नाम से आप जानते हैं, उन्होंने अपना तपस्या बल से अलग एक स्वर्ग भी बना दिए, क्योंकि बिना तपस्या से, बिना पुण्य दान पुण्य से वहां जाएंगे, लेकिन रावण तो वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो सुवर्ष कार्य शीघ्र नहीं किए, काल करूंगा। इसलिए जो सो काम है, रामचंद्र भगवान बतलाए कि शीघ्र ही करना चाहिए। तो उन्होंने भी ये मेनका का पहले और भी एक स्वर्ग का वेश आया था, लेकिन अपना तक तपस्या बल से उसको भस्म कर दिए। लेकिन जो मेनका आई, उनका सुंदर नाक, सुंदर रूप, जो समुद्र कमर, पतले वाली कमर, और धनुष का जैसे भोर से और जैसे एक वर्णन आता है नागरथ के बारे में, अग्निद्र के बारे में, उन्होंने जब तपस्या कर रहे थे उनका जो पत्नी होने का पहले जो आए थे सुंदरी, उसमें वर्णन है कि उनका जो स्तन स्वर्ण कलश जैसे था, उसमें अग्निद्र आकृष्ट होके अपना तपस्या छोड़ दिया, जैसे विश्वामित्र छोड़ दिए अग्निद्र भी छोड़ दिया, और सुंदर नाग और भ्रु एवं उनका जो सुंदर वचन सुन के जो कि स्त्री पुरुष में भेद नहीं देखते थे, जो वो विभांड का जो पुत्र था सिंह ऋष्य सिंह, उन्होंने भी अपना श्रद्धा और ब्रह्मचर्य व्रत को उन्होंने तोड़ दिया। इसलिए जिन लोग आध्यात्मिक पथ में अग्रसर होना चाहते हैं, ये शास्त्र का कहना है कि स्त्री का भ्रु एवं उनका रूप जौवन को बा एक कुछ जुगल को पहले दर्शन नहीं करना, और माताओं को कैसे दर्शन करना है, ये महात्मा लोग का कहना है कि उनको चरण से दर्शन कीजिए, ये भावना लाइए कि ही माता का, इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने ये माता संबोधन करके अभ्यास करने की बताए, क्योंकि ये जो नाक और कान और स्तन जैसे अभी शरीर का वर्णन चल रहा है, पहले नगर का वर्णन हो गया, उद्यान का वर्णन, अभी शरीर का वर्णन चल रहा है, ये पुरंजन नाम का जीव ये स्त्री का प्रति कैसे आकृष्ट होता है, क्योंकि अपना साधाय से अपना आध्यात्मिक बल से हम कर नहीं सकते जो भी क्षमता से, क्योंकि माया इतना बलवान होता है। महाजन बताते हैं कि उनको दर्शन मात्र से ब्रह्मा, एक प्रसंग में बताते हैं कि स्त्री का नाम स्मरण मात्र से अपना शरीर से आध्यात्मिक भौतिक शक्ति विचलित हो जाता है, नाम स्मरण मात्र से उनका ये रूप जौवन देखने से क्या हालत होगा। अभी आगे जाके आप सुनेंगे कि पुरंजन ने ये स्त्री का प्रति आकृष्ट हो जाएगा, और कोई साल तक उसमें उन्होंने अर्कारती जापन करेगा, फिर भी उन्होंने इतना आसक्त आ जाएंगे कि नारद मुनि को फिर आना पड़ेगा, और उसमें काल कन्या को उन्हें प्रकट कर देंगे और उनका साथ उनका व्यवहार किया, अपना राज्य और छीन ले गए, उनका भाई अब चंडवेग नामक जो दस्यु आएंगे, तो उसका बाद उन्होंने हताशा होके भगवान का चरण में इस मन को समर्पित करेंगे। तो महात्मा का काम क्या होता है ना, ये बद्ध जीव को विभिन्न प्रकार के कर्म कांड में फंसे हुए हैं, इसीलिए उनको क्या करते हैं ना, ये रूपक माध्यम से हमको ये समझा देते हैं कि ये शरीर अनित्य है, अरे शरीर में जो वस्तुएं हैं ये क्षणस्थाई है, आप जब यौवन थे अपना शरीर आप अपना ही अनुभव देखिए कितना सुंदर था, कितना मन का और वेग दृढ़ था, लेकिन हमारे जो यौवन ढल जाता है तो हमारे शकल देखने में कैसे आता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं, माताएं लिपस्टिक और फेस पैक लगा करके और पिता लोग बाल को काला करने के लिए कुछ डुप्लीकेट चीज बा जो खनसता ही उसको भी उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, और अभी वैज्ञानिक ढंग से ये यौवन को ये जो सुंदर स्तन को अक्षुण्ण रखने के लिए कई प्रकार का यांत्रिक और वैज्ञानिक इसको निकाल चुका है, लेकिन जिन लोग व्यवहार कर चुके हैं आप सुने होंगे, लेकिन समय आने पर ठीक नहीं रहता है। जैसे आप मान लीजिए ये प्रकृति की का चीज व वस्तु हम जितना भी व्यवहार करते हैं कुछ दिन के लिए, इसीलिए हमको आध्यात्मिक तरफ से अग्रसर होना चाहिए। कैसे ना, महाजन जन गतस्य पंथा। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं जो कि ये रूप जोबन का बारे में, तो उसको मैं आपको बांग्ला में पढ़ के सुनाता हूँ। रूपेर गौरव के नो भाई, ये रूप का गौरव अब क्यों देखा रहा है। अनित ए कलेबर कबू न है स्थिरतर, सम न आईले किचू ना। आम जिसको ए बचमन से खा पीर के चबचस लेह पेह चुसने वाला और चबाने वाला पीने वाला निगालने वाला और छप्पन भूख खा के हम शरीर को तंदुरुस्त करते हैं, ये क्या ना कबू न है स्थिर चर। और कबू स्थिर नहीं है बा, नित्य नहीं है बा, सभी दिन के लिए नहीं रुकेगा। समन आईले किचू ना, समन बोलने से क्या समझता, जमराजा आने से। इसीलिए पोलाइते पछना ही जमाचे पीछे। हाँ, हम जितना भी ये प्राकृतिक वस्तु को बा अपना यांत्रिक व्यवस्था को हम इस्तेमाल करें कि बा उपयोग करके हम शरीर को और वो लंबा समय सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, समन अले किचु ना। जब जमराजा आ जाएंगे तब तो कुछ भी रहेगा नहीं। ए अंग शीतल होवे आखि स्पंद हीनर होवे चितार अंग ने तबे छाए। क्या होगा ये शरीर ना, शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अभी जो शरीर में ताप मात्रा है, आप ताप जब हमारे घट जाता है तो हमको क्या भूखा हो जाता है। और जो अंतिम समय आता है जो 120 डिग्री आ जाता है तब क्या है, राम राम सत्य हो जाता है। और जो वो पहले से आदत है तो अंतकार चुमाव एवं स्मरंग मुक्ता कड़े बरम। अंत समय में भगवान यदि नाम आएगा कब ना, पहले से हम जब आदत डालेंगे। और ये अंग शीतल होवे आखि स्पंद हीन होवे। अभी जो हम बहुत सुंदर से भगवान को दर्शन करते हैं, भौतिक वस्तु को दर्शन करते हैं, वो अंग वो जो नेत्र क्या होवे ना, स्पंदन हमारे जो स्पंदन हो रहा है, बंद हो रहा है वो खोल रहा है, ये काम उस समय नहीं करेगा। ये आंख तब सार्थक है भगवान को दर्शन करने से, नहीं तो क्या है ना, ये आंख एक मोरपुच में भी आंख है और मोरपुच में जो आंख है वही काम का है क्या। लेकिन उसका सुंदरता कब बढ़ता है, भगवान का सिर में जब दे देते हैं। और क्या है ना, एमुक सौंदर्य हेरा दर्पण है निरंतर शोषिवार हईवे भोजन। मुख बा मुख को चंद्रमुख, जैसे प्रभुदानंद महाराज बताते हैं, जो कि विवाह बंधन में आ जाते हैं बा गृहस्थाश्रम शिकार करते हैं, माताएं क्या होते हैं, पहले चंद्रमुखी, उसका बाद सूर्यमुखी, उसका जो तीसरा पैर क्या है, ज्वालामुखी। उसमें ये जो हो ज्वालामुख भी उस समय नहीं रहता, क्योंकि ये जो चंद्रमुख को हम क्या करते हैं, ये मुख सौंदर्य जो हेरा दर्पण है निरंतर। आप लोग को अनुभव होगा, अनुभव भी है, हम तिलक करने के लिए हमेशा जब तीन बार तिलक करते हैं तो तीन बार दर्पण में हवा आईना को देखते हैं, हमारे सुंदर मुख को देखते हैं। कब देखते हैं, जब हमारे यौवन वयस है, केसर से यौवन हो जाता है। और उस समय जब ज्वर आ जाता है सब गाल का जमड़ा सब धीरे धीरे खींचने लगता है, आंख का पता कला हो जाता है, तब तो क्या है, देखने में ही लायक नहीं होता है। ये सुंदर जो हेरम दर्पण ते निरंतर शोषिवार हई वे भोजन, जब राम नाम सत्य हो जाएगा वा हो जाता है, ये शरीर का क्या गति होता है, शोषिवार हई वे भोजन। यदि श्मशान नहीं, श्मशान में नहीं के लेके जो फेंक दिया जाता है, आजकल तो व्यवस्था है वा वैदिक संस्कार संस्था अनुसार संस्कार है, उसको यदि अग्नि संस्कार कर दिया गया तो अग्नि देवता उनको पवित्र कर दिए। लेकिन यदि ऐसे फेंक दिया जाए सौसी बार होइबे बोले कुत्ते का और सियाल का बस श्रीगाल का भोजन हो जाएगा। तो वो सोच लीजिए हमारे ये सुंदर नाक सुंदर कान और सुंदर भ्रू और सुंदर बात का कहाँ ठिकाना रहा। और भोजन होने का बाद क्या होगा ना, उन्होंने मल करके फिर त्याग देंगे और कृमि कीड़ी उसको ग्रहण कर लेंगे। अरे शरीर को यदि दाह संस्कार कर दिया गया तो थोड़ा से भस्म होगा बा राख हो जाएगा। जे वस्त्र आदर करो जेबा आभरण पर कुथा सब रहिबे तखन, जो ये शरीर हमारे त्याग दिए तो समय हम सुंदर सुंदर जो वस्त्र आभरण कान में माताएं कुंडल पहनते हैं, नाक में नाक का फूल पहनते, पहले जमाना में बीच में एक दंडी पहनते हैं, हिंदी में क्या बताते पता नहीं, एक नाक में इधर से भाई बांध देते हैं लोग जैसे, लेकिन ये सब उस समय कहाँ गया, क्योंकि आज इस शरीर से हम अलग हो चुके हैं। जेबा आवरण कोथा सब रहिबे तक वो सब कहाँ रहेगा, उस समय हम त्याग चुके हैं। दारा सुत बंधु सबे शमशाने तुम्हारे लोबे दग्ध करे गुरुते परिवे। हम जो अपना आत्मीय मानते हैं कुटुंब मानते हैं उनका गति कब कहाँ तक, एक तो जिसको हम पति नहीं बल्कि हाथ पकड़े उनको पानी ग्रहण किए उनका, ये शास्त्र का नियम है वो मात्र द्वार का दरवाजा का तक है, और बंधु बांधव कहाँ तक, शमशान तक, और बाल बच्चा कहाँ तक हो अपना ऐसे नियम है उन्होंने उनको समझाते बुझाते घर में रख देते। और हमको समस्या में लगे क्या करेंगे, और दग्ध करके फिर घर घर को वापस आएंगे। तुम्ही कारो केतु मारो ए बुझी देखो सारो देहनाश अवश्य घटिबे। ये जो हमारे सुंदर नाक सुंदर कान सुंदर शरीर क्या होगा ना, आप समझ के देखो विचार करके देखो, क्योंकि ये विचार करने के लिए ये नारद मुनि को ये पुरंजन का उपखान समझा रहा है। उन्हें समझ जाए कि ये परिवार में ये संसार में लिप्त होने से अपना धन संपद कैसे एक दिन छीना जाता है, और ये शरीर अवश्य घटना है वा विनाश होगा। सुनित्य संबल चाय हरिगुण सदा गाओ हरिनाम जप सदाए। इसीलिए आप नित्य संबल चाहते हो पर नित्य आनंद व सुख लेना चाहते हो, हरिगुण सदा गाओ। कौन से हरिगुण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कौन ना हरि नाम जप सदाई। कुतर्क छड़िया मन कर कृष्ण आराधन बिनु देर आश्रता है। आप कुतर्क छोड़ के आप क्या करना ना, कर कृष्ण आराधन। ये अनित्य संसारे स्त्री पुंग व्यवहारे न होए प्रीति धन। ये अनित्य संसार में भौतिक संसार में कभी भी प्रेम नहीं हो सकता है, ये चर्म सुख जता है, ये चर्म स्त्री और पुरुष का जो मिलन है, स्त्री का और पुरुष का चर्म सुख मात्र है, ये इंद्रिय सुख मात्र है। इसको छोड़ के क्या करना ना, कृष्ण आराधना करो, कृष्ण का गुणगान करो एवं कृष्ण का आराधना करो। विनोदर आश्रयता है विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं रूपेर गौरव गौरव के न भाई। इसलिए ये रूप जौवन का गौरव छोड़ के भगवान का आराधना करो, कैसे ना जैसे यज्ञ पत्नियां आराधना किए। नहीं तो क्या होगा ना, नाना जुनी सदा फेरे कदर जब भक्कण करे सही जीव अधपते जाए। इसलिए जिन जिन लोग ये नित्य आनंद लेना चाहते हैं किसका आराधना करना चाहिए, कृष्ण का, कृष्ण का आराधना करना चाहिए, उनका रूप का। जैसे भगवान का सुंदर रूप है, जो रूप का वर्णन सुन के निर्विशेषवादी वा निर्विशेष रूप को ध्यान किया करते थे सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने सविशेषवादी होकर भगवान का ये दिव्य स्वरूप का जीवन का अंतिम तक उन्होंने गुणगान किए। कौन से रूप? बरहापीडम नटवर वपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिशम वैजयंती जमाणम वेणुरंध्रान रधर सुदया पुरयन प्रोरविंदे पुरयन गोप वृंदे बृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशगैत गिरिति। भगवान जब वृंदावन धाम में प्रवेश कर रहे थे उनका सिर में मयूर पूछ था, बरहापीडम नट बर बभू, उनका शरीर नाचने वाला जैसे ही था। और नट बर बभू कन्नय कन्निकारम, भगवान कान में क्या पहने हुए थे? कनियर का फूल, कनक कुंडल करे झलमल। इसमें एक बात आता है कि दुई श्रुति मूले कनक कंडल झुले, जैसे नित्यानंद प्रभु का बारे में जो आता है उसमें वर्णन है, नित्यानंद का जो तत्व वर्णन है पंचस्कंद में और चैतन्य भागवत में वर्णन है, जो नित्यानंद प्रभु जो अभिन्न जो बलराम है उनका जो रासलीला का वर्णन है उसी प्रसंग में कि ही शेष जी का जो कान में एक कुंडल है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, पहले बताए कनक कुंडल एक काने, किंतु दूसरा बार में जो बताते हैं कि दुई श्रुति मूले कनक कुंडल झूले। तो भगवान का दो कान में कन्यर फूल था, कन्यो कन्निकारम बिव्रतवास, भगवान पीताम्बर वस्त्र पहन हुए थे और सोने का जैसे चमचमा रहा था। बिव्रतवास कनक कविषम वैजयंती जम माला, और भगवान ये पांच प्रकार फूल से जो भगवान था हुआ था माला पहने हुए थे। इसे हम संध्या आरती में गाते हैं, झलमल 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 करे गोदाधरे गांथा माला झलमल 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 करे भक्त बिंदेर गांथा माला झलमल 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 करे बिव्रतवास कनक कविषम वैचयंत माला रंध्रान वेणु। भगवान अपना अधर सुधा में बंसी लेके वादन करते हैं, पेणु रंध्रान रधर सुदया पूरयन गोपबिंदे, भगवान अपना सहपाठी का साथ परिषद का साथ सखाओं का साथ, और उन लोग क्या करते थे? सुपद बृंदारण्यम सुपद रमणम, भगवान ये वृंदावन में कोई बूट हील वा बाटा वा संडा कंपनी का चप्पल नहीं पहने के, वह खोड़ाऊ सोने का कि चांदी का अष्ट रत्न का नहीं, वृंदारण्य सुपद रमणम प्राविशकित कीर्ति। ये जो सखा लोग है वह अपना सहपाठी लोग भगवान का गीत कीर्ति मत उनका कीर्ति गुण गान करते हैं। कौन से कीर्ति? पुतना को उधार कर दिए, बकासुर को उधार किए, गिराज गोवर्धन को धारण किए, केसी दत्त को उधार किए, सकटासुर को उधार किए, ये सब रूप का गुण का वर्णन करते हैं। तो हम लोग को भी क्या करना था? जो अनित्य संसार में जो ये भौतिक शरीर का प्रति आकृष्ट न होकर, इसलिए बार बार साधु लोग बा शास्त्र में वर्णन है कि ये सुंदर स्तन सुंदर नाक और सुंदर कान सुंदर शरीर से अब आसक्त मत है। स्त्री के लिए पुरुष को सावधान और पुरुष के लिए स्त्री की सावधान, नहीं तो क्या होगा ना, पैर चौरासी चक्कर जाना पड़ेगा, इसका प्रमाण किया है। आगे पुरंजन फिर इस भौतिक शरीर से आकृष्ट होने के बाद उन्होंने फिर स्त्री शरीर को प्राप्त हो गए। इसलिए पुरुष यदि स्त्री का प्रति आकृष्ट है पहले से, उसको यदि भक्त का सेवा, भक्त का बात को बा उनका शास्त्र का बात को यदि वो स्वीकार कर दिया तो वो श्री अंतिम शरीर में श्री शरीर को प्राप्त होगा बा 84 लाख जुनि में फिर चक्कर में आ जाएगा। और स्त्री यदि पुरुष का प्रति आकृष्ट हो जाता है तो क्या होगा, अंतिम में फिर उसको पुरुष शरीर मिलेगा। अरे शरीर देह धारण करने से आप लोग को अनुभूति है कि जब वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं जब यौवन ढल जाता है, वार्धक्य दशा आ जाता है, हमारा डायनामा काम नहीं करता है, नाक में पानी टपकता रहता है। आप कितना भी आप दूर दृष्टि का चश्मा ले लीजिए, नजदीक का ले लीजिए, कलर वाला डे नाइट का ले लीजिए, काम नहीं करेगा, कान में सुनाई नहीं देगा। आप जैसे आप सुन रहे उसमें तगड़ा से बोलना पड़ेगा, अरे भाई जोर से बोलो। लेकिन शास्त्र में बताया गया कोई ये बहरा का साथ आप जंगल के बा साथ दे सकते हो, आप उसका साथ रह सकते हो, और बोबा का साथ नहीं। क्यों? आप मान लीजिए एक जंगल में जा रहा है, आगे आपको विपद में है, सम्मुखीन रहना है, कोई शेर बा भाग आपको हिंसा जो तो अटैक करेंगे, आप बहरा को आप धीरे से बता देंगे ना तो वो जोर से बोला क्या है, तब तो क्या होगा, वो जो शत्रु आपको आक्रमण कर देगा। लेकिन जो बोबा है उसको धीरे से बता दो, क्यों सुन तो सुनने में समझे नहीं आएगा, उसको इंगित कर दो, क्योंकि यहाँ कोई हिंसा जंतु है तो वो चुप से आपको साथ देगा, आप आसानी से आप जा सकते हैं। इसीलिए ये भौतिकवादी जो बहिरा है उनका साथ देना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए। और बोबा का साथ रहने के लिए क्यों बता रहा है ना, उन्होंने भगवान का गुणगान अलावा वो कुछ नहीं करते हैं, ये भौतिक चर्चा से उन्होंने विरक्त रहते हैं, तो उनका साथ देंगे तो क्या होगा ना, आप ये भगवत धाम को प्रस्थान करेंगे। और भगवत धाम को प्रस्थान करने से क्या होगा वहां पर ना, लित लीला में भगवान का जो दिव्य लीला हम बताया तो वहां भी भगवान का दिव्य लीला चलता रहता है, और तो उसे दिव्य लीला में हम शामिल हो जाएंगे। और भौतिकवादी से यदि हम संग करेंगे तो क्या होगा ना, अंतिम में हमको इस जन्म मृत्यु चक्र में पड़ जाएंगे। इसीलिए प्राचीन वैष्णव को ये प्रंजन उपखान सुना करके फिर उनको वह भगवत धाम को उन्होंने भेज दिए। इसलिए बताया जाता है साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र, साधु संग सर्वसिद्धि है। तो हम लोग तो बहुत दिन से लंबा समय से साधु संग कर रहा है, तो हमारे क्या होगा, लव मात्र साधु संग होकर थोड़ा देरी से साधु संग करके यदि सर्वसिद्धि हो जाएगा, अष्ट सिद्धि हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या बतलाए, सर्वसिद्धि मतलब ना, यह होते सर्वसिद्धि होइबे सवार, यह होते मतलब यह क्या है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ये नाम हम सद्भाव से प्रेम से अपराध मुक्त होके यदि भगवान का नाम जप करेंगे और तो गुणों कीर्तन करेंगे, उसका रूप हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमारे ये भौतिक वस्तु संस्कार में आके हमारे चित्ररूप का दर्पण जो है गंदा हो चुका है, इसीलिए शुद्ध भाव से नाम करना पड़ेगा। भजन र मधुश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, सभी भजन से जो 64 प्रकार जो भजन का अंग है, भक्ति का अंग है, उससे सर्वश्रेष्ठ कौन है, नवविधा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवरम अर्चनम वंदन दास्यम सख्यात्म निधिवेदना। ये नवदा भक्ति का बाद क्या बताए, नवदा सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सबसे नवविधा भक्ति से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। निरपराध नाम लैले पाए प्रेम, नाम में रति हैले प्रेमेर उदय प्रेमे ते हरि के पाए। नाम में यदि रति हो गया तो मान लीजिए प्रेम का जो सीढ़ी आप पहुंचाने वाले, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि नाम में हमारे रुचि हो रहा है तो हमारे प्रेम प्राप्त करने के लिए ज़्यादा देर नहीं है। और नाम में यदि रुचि नहीं है दुर्दैव, ये नाम में रुचि नहीं हो रहा है। क्यों ना, अपराध युक्त नाम हम ले रहा है। इसीलिए ये नाम का बहुत नाम नामी अभिन्न निबरा निबरा अपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले धर्म अर्थ काम को छोड़ दीजिए, प्रेम अपमार्थ महान। और प्रेम ये भौतिक वस्तुओं से नहीं होता, प्रेम होता है भगवान से। और जो प्रेम का प्रमाण क्या है ना, ब्रज का गोपियां प्रेम भाव से काम भाव से भगवान को आराधना किए और भगवान उनको अपना नित्य लीला में कुछ तो है और जो सा कृपा सिद्ध थे और साधन सिद्ध थे उनको भी ये प्रेम सागर में डुबा दिए एवं प्रेम राज्य को ले गए।